गाथा में आप सुन रहे हैं डिप्टी कमिश्नर मिस्टर किंग की लिखी कहानी शिमला का बंगला। लीजिए सुनिए कहानी का दूसरा भाग। कहानी के पिछले भाग में आपने सुना, शिमला के एक बंगले में जितने भी लोग रहने के लिए आए वो सभी एक दिन बाद ही उस बंगले को छोड़कर दूसरी जगह रहने के लिए चले गए। उन सभी का कहना था कि उस बंगले में तरह तरह की आवाज़ें आती हैं। वहाँ का स्टेट ऑफिसर इसे वहम मानता है और इसके बाद एक दिन वो खुद उसी बंगले पर अपने कुछ साथियों के साथ पार्टी करने जाता है। बंगले में उसे भी कोई साया नज़र आता है और एक आवाज़ सुनाई देती है, अब आगे। कैथू के बंगले में स्टेट ऑफिसर अपने दोस्तों के साथ पार्टी में बिजी था। तभी मेज पर एक साया नजर आया, साथ ही एक आवाज सुनाई दी, क्या तुम भी डरकर भाग जाओगे? आवाज सुनते ही स्टेट ऑफिसर और उसके दोनों दोस्तों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। तभी उस साये ने फिर कहा, मुझसे डरो नहीं प्लीज, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अभी साये की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अगले ही पल वो तीनों सर पर पांव रखकर बंगले से बाहर की तरफ भागने लगे। एक आवाज उनका पीछा कर रही थी, मेरी बात तो सुनते जाइए, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मुझ पर भरोसा कीजिए। रुकना तो दूर, किसी ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। बंगले से बाहर निकलते ही ये आवाज आना बंद हो गई। बावजूद इसके रात के अंधेरे में वो तीनों कितनी ही दूर भागते चले गए। अब जब ये हादसा स्टेट ऑफिसर के साथ हुआ तो उसे यकीन हो गया कि इस बंगले में कुछ न कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। दूसरे दिन लोकल पुलिस को तहकीकात का हुक्म दिया गया। पुलिस की एक गारद ने पूरे बंगले का घेराव कर लिया। एक सब इंस्पेक्टर कुछ सिपाहियों के साथ अंदर चला गया। वहाँ उसने हर हिस्से का बारीकी से जायजा लिया। वहाँ उसे कोई ख़ास बात नज़र नहीं आई। इस पूरी कार्रवाई में दिन गुजर गया और शाम के बाद रात हो आई। बंगले के अंदर और बाहर रोशनी जला दी गई थी। थक कर सब इंस्पेक्टर बेडरूम में जाकर एक कुर्सी पर बैठ गया। बंगले का घेराव अब भी जारी था। आज भी ठंड ज़्यादा थी। कुछ सिपाही बंगले के बरामदे में आ गए। वो सभी बंगले के दरवाजे के सामने कुर्सी डालकर बैठ गए। धीरे धीरे रात गहरी होती जा रही थी। बेडरूम में बैठा सब इंस्पेक्टर ऊँघने लगा। अचानक उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी, आप डरिएगा नहीं और मेरी बात सुन लीजिए प्लीज़। ये आवाज़ आते ही इंस्पेक्टर उठकर खड़ा हो गया। उसके सामने एक लड़की का साया मौजूद था। उसने होल्स्टर से रिवॉल्वर निकाली और फायर कर दिया। फायर होते ही लड़की की आवाज़ सिसकियों में डूब गई। सब इंस्पेक्टर की हिम्मत जवाब दे गई और वो बाहर की तरफ भागा। कुछ देर बाद वो बाहर खड़ा हांफ रहा था। इस सर्दी में भी वो पसीने से सराबोर हो रहा था। इस घटना के बाद मामला ऊपर तक पहुंच गया। कई पुलिस अफसर इस काम पर लगाए गए लेकिन नतीजा सिफर रहा। आवाज़ सुनते ही अफसरों के पैर उखड़ जाते। वो फिर पलटकर उस बंगले में जाने के नाम से ही कांपने लगते। जब कोई भी अफसर इस रहस्य से पर्दा नहीं हटा सका तो दिल्ली से एक पुलिस ऑफिसर को बुलाया गया। वो बड़ा ही दिलेर अफसर था। उसका नाम आगा था। टेलीग्राम मिलते ही आगा पहली ट्रेन से शिमला पहुंच गया। यहां आते ही केस को समझने के लिए उसने तमाम लोगों के बयान दर्ज किए। इस काम से फारिग होने के बाद आगा सिपाहियों की गारद लेकर बंगले की तरफ रवाना हो गया। जैसा कि हकीकत में होता है, आगा ने भी सबसे पहले पूरे बंगले की जांच कर डाली। उसने बंगले के हर हिस्से का बारीकी से मुआयना किया। उसे भी कोई ख़ास बात नज़र नहीं आई। आगा ने गारद के सिपाहियों के साथ रात का खाना उसी बंगले में खाया। उसके बाद सेंट्रल हॉल के एक कोने पर पड़ी राइटिंग टेबल के सामने कुर्सी डालकर बैठ गया। वो उस साए का इंतज़ार करने लगा। उसने होल्स्टर से रिवॉल्वर निकालकर मेज पर ठीक अपने सामने रख ली थी। रात के तकरीबन 11:30 बजे थे। ठीक तभी मेज पर एक साया नजर आया। साये से आवाज आई, आप कुछ सुनने के लिए आए हैं या फिर? साये ने बात अधूरी छोड़ दी। आवाज सुनते ही पुलिस ऑफिसर आगा चौंक कर तुरंत खड़ा हो गया। वो जितनी तेजी से खड़ा हुआ था उतनी ही तेजी से उसने रिवॉल्वर भी उठाया था। तभी आवाज आई, मैं आपसे कुछ कहने आई हूं। हकीकत जानने आए हो तो हमदर्द बनकर मेरी बात सुन लो। पिस्तौल और गोलियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे यकीन है कि तुम संजीदा आदमी हो और मुझे इस तकलीफ से निजात दिला सकते हो। वादा करो कि तुम मेरी मदद करोगे। आगा ने अपने आप को संभालते हुए कहा,
मैं तुम्हारी मदद का वादा करता हूं। मैं तुम्हारी पूरी बात भी सुनूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। मैं बाकी लोगों को यहां से रवाना कर दूं। वो सर्दी में बेवजह क्यों परेशान हो?
मैं वक्त देती हूं, ताए से आवाज आई। आगा वहां से बाहर निकला और बंगले की घेराबंदी करने वाली गारत को वहां से विदा कर दिया। गारत के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर ने आगा से कहा,
सर आपकी जान खतरे में पड़ सकती है, आप बेवजह क्यों रिस्क ले रहे हैं? हमारे साथ लौट चलिए।
मेरी जिंदगी का ये सबसे दिलचस्प और शायद सबसे अहम केस है, मैं इससे मुंह नहीं मोड़ सकता। मैं अंदर जा रहा हूं, तुम भी गारत के साथ वापस चले जाओ, आगा ने कहा। इसके बाद वो जरा भी वक्त गवाए बिना बंगले के अंदर चला गया। मेज के करीब पहुंचकर आगा ने अपने कपड़े और बूट के तस्मे ढीले किए, होल्स्टर को उतारकर मेज पर रख दिया। अब वो पूरे इत्मीनान से बैठा उस साए का इंतजार करने लगा। उसे ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा, वो साया कुछ देर बाद ही नमूदार हो गया। मुझे अफसोस है कि आप बहुत थके हुए हैं और मैं आपको परेशान कर रही हूं। मुझे यकीन हो गया है कि आप मेरी मदद को तैयार हैं। आप चाहें तो आराम कर लें, हम कल बात कर सकते हैं, उस साये ने कहा।
शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल है कि अगर हम आज ही बातें कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, आप मुनासिब समझें तो मेज के सामने जो दूसरी कुर्सी पड़ी है उस पर बैठ जाएं।
शुक्रिया आपका, साये से आवाज आई। अगर आप अभी बात करना चाहते हैं तो मुझे क्या एतराज है? आगा ने वक्त खराब न करते हुए तुरंत अपनी डायरी खोल ली और कलम संभाल लिया। उसने पुलिसिया आदत के मुताबिक पहला सवाल किया,
आपका नाम?
आछुरी, साये ने बताना शुरू किया। ये मेरा शादी से पहले का नाम है, शादी के बाद मुझे मिसेस आइजक कहते थे। मैं अपनी माँ की इकलौती संतान थी। हम माँ बेटी मुल्क के तमाम हिस्सों में खाना बदोशों की तरह घूमते फिरते थे।
तुम्हारे पिता का नाम? आगा ने पूछा।
इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मैंने एक तवायफ के यहाँ जन्म लिया था। हमारा पेशा गायकी और नृत्य था। माँ ने मुझे सीनियर कैम्ब्रिज तक पढ़ाया था। मेरा रिकॉर्ड आपको मियो गर्ल्स स्कूल से मिल सकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारा पेशा म्यूजिक और डांस था, इसलिए हम जगह जगह अपना प्रोग्राम पेश करने जाया करते थे। आछुरी की आत्मा कुछ देर के लिए रुकी, फिर उसने आगे बताना शुरू किया। मैं एक बार रेस खेलने के लिए दिल्ली से बंबई गई। रेस कोर्स में पहली बार मेरी मुलाकात आइजक से हुई। आइजक पारसी था। हमारा पहली ही नजर में प्यार हो गया। इसी दौरान मुझे पता चला कि मेरी माँ को कोई पुराना आशिक मिल गया है, वो उसके साथ चली गई है। अब मैं बेसहारा थी, बेआसरा थी। नतीजे में मैं आइजक के पास रह गई। हमने एक दूसरे का जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया। इस वक्त आप जिस बंगले में बैठे हैं वो कभी आइजक का हुआ करता था। बाद में उसने ये बंगला राय बहादुर राम सरन दास को बेच दिया। राय बहादुर ने अपनी ये कोठी सरकार बहादुर को किराए पर दे दी। इसके बाद से ही ये बंगला आज तक मेरी वजह से वीरान पड़ा है। मैंने यहाँ आने वाले हर शख्स से मिन्नतें की कि वो मेरी बात सरकार बहादुर तक पहुंचा दे, लेकिन सभी डर कर भाग गए। कुछ देर बाद ही आछूरी की आत्मा सिसकियों में डूब गई। आगा हैरान परेशान बैठा रहा। भला वो एक आत्मा को क्या ढांढस बंधा सकता था। कुछ देर बाद जब उससे रहा नहीं गया तो उसने पूछा, फिर इसके बाद क्या हुआ? मुझ पर गमों का पहाड़ टूटा है। मैं इस वक्त अपनी दास्तान बयां करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूं। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं कल तक के लिए वक्त चाहती हूँ, कुर्सी पर बैठी आछूरी की आत्मा ने कहा। लेकिन आपको भगवान का वास्ता, मुझे यूं बीच मझधार में छोड़कर मत चले जाइएगा। कल जरूर तशरीफ लाइएगा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी और मुझे आपसे मदद की दरकार भी है। आगा ने अपने भारी बूटों के तस्मों को कसा, कपड़े दुरुस्त किए, फिर उस पर होल्स्टर टांगा और डायरी लेकर बंगले से बाहर आ गया। बाहर एक पेड़ से उसका घोड़ा बंधा हुआ खड़ा था। वो घोड़े पर सवार होकर जाने लगा तो पीछे से आवाज आई, अंधेरा बहुत है, संभाल कर जाइएगा, कल जरूर आ जाइएगा। फिर आगे क्या होता है इस कहानी में, ये सुनिए अगले भाग में। सुनते रहिए गाथा रूह वही रूप नया। गाथा में आप सुन रहे थे डिप्टी कमिश्नर मिस्टर किंग की लिखी कहानी शिमला का बंगला। आपने सुना इस कहानी का दूसरा भाग। कहानी का संपादन कुमार रहमान का। गाथा में इस कहानी को आपके लिए प्रस्तुत किया शिफाली कपूर ने।